Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall.
जब 14 अगस्त 1947 की आधी रात पंडित नेहरू ये भाषण दे रहे थे, उनके और भारत के आखिरी वायसराय की पत्नी एडविना माउंटबेटन के दिलों के तार आपस में जुड़ चुके थे। माउंटबेटन दंपति के भारत में कदम रखते ही जिस पहले शख्स ने उनसे मुलाकात की थी वो थे जवाहरलाल नेहरू। माउंटबेटन के भारत पहुंचने के 10 दिनों के भीतर ही नेहरू और एडविना की नजदीकियों को नोटिस किया जाने लगा था। वैसे तो लॉर्ड वेवल के जमाने में भी नेहरू गवर्नमेंट हाउस के स्विमिंग पूल में तैरने जाते थे, लेकिन तब कोई इस बारे में बात नहीं करता था। लेकिन जब एडविना माउंटबेटन भी इस स्विमिंग पूल में नेहरू के साथ तैरती हुई देखी गईं, तो लोगों ने इन दोनों के संबंधों पर बात करना शुरू कर दिया। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और हाल ही में प्रकाशित एंड्रयू लोनी की पुस्तक द माउंटबेटन्स देयर लाइव्स एंड लव्स के समीक्षक शेख मुजीबुर रहमान बताते हैं,
ये सच था कि एडविना और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों का लव मैरिज हुआ था, लेकिन वो लव मैरिज में लव का पार्ट जो था वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए कि कई सारे उनके बॉयफ्रेंड उसके बाद बने थे और बहुत हाई प्रोफाइल बॉयफ्रेंड बने थे। उनका एक गार्डन पार्टी हुआ था, तो जब उस पार्टी बहुत ही क्राउडेड था तो जगह नहीं थे बैठने के लिए, नेहरू साहब ने उनके पैर के पास बैठा, खाली जगह था। कुछ लोग ये भी कमेंट करते थे कि एडविना का आँख नेहरू से निकला नहीं, मतलब नेहरू के ऊपर ही उनका पूरा फोकस रहा था, नेहरू के ऊपर में। तो इट इज़ पॉसिबल कि वो सारा उस वक्त एक गॉसिप शुरू हो गया होगा।
नेहरू की आकर्षक शख्सियत का असर न सिर्फ माउंटबेटन दंपति पर पड़ा, बल्कि उनकी 17 साल की बेटी पामेला हिक्स भी उनसे बहुत प्रभावित हुई। बाद में उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा,
My mother and Pandiji loved each other dearly. They really, really loved each other. That old expression of soulmates.
मेरी माँ और पंडित जी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। पुराना मुहावरा सोलमेट उन पर पूरी तरह से लागू होता था। मेरे पिता बहिर्मुखी थे, जबकि मेरी माँ अपने आप में ही रहना पसंद करती थीं। वो बहुत लंबे समय तक विवाहित रहे थे और एक दूसरे के बहुत अच्छे साथी भी थे, लेकिन इसके बावजूद वो अकेलेपन की शिकार थीं। तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो संवेदनशील, आकर्षक, सुसंस्कृत और बेहद मनमोहक था। शायद यही वजह थी कि वो उनके प्यार में डूब गईं।
इस बीच भारत में राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद लोगों की नजर एडविना और नेहरू पर थी। नेहरू के जीवनीकार स्टैनली वॉलपर्ट लिखते हैं,
एक बार मैंने नेहरू और एडविना को ललित कला अकादमी के उद्घाटन समारोह में देखा था। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ था कि नेहरू को सबके सामने एडविना को छूने, उनका हाथ पकड़ने और उनके कान में फुसफुसाने से कोई परहेज नहीं था। माउंटबेटन के नाती लॉर्ड रेम्सी ने एक बार मुझसे कहा था कि उन दोनों के बीच महज अच्छी दोस्ती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन खुद लॉर्ड माउंटबेटन एडविना को लिखी नेहरू की चिट्ठियों को प्रेम पत्र कहा करते थे। उनसे ज्यादा किसी को ये अंदाजा नहीं था कि एडविना किस हद तक अपने जवाहा को चाहती थी।
नेहरू की एक और जीवनी लिखने वाले एमजे अकबर बताते हैं कि इस बारे में सबसे सशक्त प्रमाण टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे रूसी मोदी ने उन्हें दिया था।
1949 से 1952 के बीच रूसी के पिता सर होमी मोदी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। नेहरू नैनीताल आए हुए थे और राज्यपाल मोदी के साथ ठहरे हुए थे। जब रात के 8 बजे तो सर मोदी ने अपने बेटे से कहा कि वो नेहरू के शयन कक्ष में जाकर उन्हें बताएं कि मेज पर खाना लग चुका है और सबको आपका इंतजार है। जब रूसी मोदी ने नेहरू के शयन कक्ष का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि नेहरू ने एडविना को अपनी बाहों में भरा हुआ था। नेहरू की आंखें मोदी से मिली और उन्होंने अजीब सा मुंह बनाया। मोदी ने झटपट दरवाजा बंद किया और बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद पहले नेहरू खाने की मेज पर पहुंचे और उनके पीछे पीछे एडविना भी वहां पहुंच गईं।
आखिर ऐसी क्या बात थी कि नेहरू और एडविना एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए, खासतौर से ये देखते हुए कि भारत उन दिनों राजनीतिक झंझावात से जूझ रहा था।
Beautiful, beautiful voice and speaking, very erudite, tremendously knowledgeable, great fun, very fiery-tempered, but the kind of
नेहरू बहुत ही अच्छी बातचीत करने वाले विद्वान और करिश्माई शख्स थे। नेहरू की पत्नी बहुत पहले ही मर चुकी थीं, उनकी बेटी इंदिरा शादीशुदा थी, उनके दो बच्चे थे और वो दिल्ली से बाहर रहती थीं। उन्होंने अपनी बहन को राजदूत के रूप में मॉस्को भेज रखा था। तभी उनकी मुलाकात एक बहुत ही आकर्षक महिला से होती है। दोनों के बीच एक तरह की चिंगारी पैदा होती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं।
अब सवाल उठता है कि इन अंतरंग संबंधों को एडविना के पति लॉर्ड माउंटबेटन ने किस तरह से लिया।
इस किताब में पहली बार लोने साहब ये चीज़ को बताए हैं, वो लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के साथ बताए हैं कि माउंटबेटन का भी औरतों से इंटरेस्ट कम गया था। ही वॉज ए क्लोसेटेड गे, तो उनके भी अपने पार्टनर्स थे, उनके भी अफेयर्स थे, लड़कियों के साथ था और मर्दों के साथ भी था। एक चीज़ को हमको ये याद में रखना पड़ेगा कि एडविना माउंटबेटन ये भी जानती थी कि वो वाइसरॉय की वाइफ हैं और उनका एक जिम्मेदारी है उस पर्टिकुलर हिस्टोरिक टाइम में, और इसलिए वो खाली नेहरू के साथ नहीं, वो एक सबसे बड़ा कदम जो उठाई थी दिल्ली आने के बाद में, वो जो प्रोमिनेंट वीमेन फिगर थे सबसे वो एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाने का कोशिश की थी डिलिबरेटली, जैसा राजकुमारी अमृत कौर के साथ, जैसा पटेल की बेटी के साथ, जैसा विजयलक्ष्मी पंडित के साथ, इन सबों के साथ स्पेशल कनेक्शन बनाकर वो किस तरीके से सोचते हैं और उनके जो दोस्त लोग जो मेजर फिगर्स हैं वो किस, वो सारा चीज़ वो लेती थी उसके अंदर में। माउंटबेटन भी चाहते थे कि एडविना ये रोल प्ले करें और इसका फीडबैक वो उनको देते रहें।
आखिर वो घड़ी भी आ गई जब एडविना और नेहरू ने एक दूसरे से विदा ली। भारतीय मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में एक विदाई भोज दिया। बीबीसी ने पामेला हिक से पूछा कि उनकी माँ के लिए नेहरू से विदा लेना कितना कष्टपूर्ण था।
Heartbreaking. Just before she left, she had taken a very beautiful emerald ring she had.
उनके लिए ये दिल तोड़ने जैसा था। जाने से पहले उन्होंने अपनी एक बहुत सुंदर पन्ने की अंगूठी निकाली, उसे उन्होंने नेहरू की बेटी इंदिरा को दे दिया। नेहरू हालांकि एक अमीर परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ देश को दान कर दिया था। एडविना ने इंदिरा से कहा कि वो ये अंगूठी नेहरू को नहीं दे रही हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो इसे नहीं लेंगे। अगर कभी भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो तुम इस अंगूठी को बेच देना। अगली सुबह जब नेहरू गवर्नमेंट हाउस पहुंचे तो उन्होंने उपहारों का आदान प्रदान किया। एडविना ने उन्हें 18वीं सदी का सोने का बना एक फ्रेंच डिब्बा दिया, नेहरू उनके लिए एक पुराना सिक्का, पके आमों का एक क्रेट और अपनी आत्मकथा की एक प्रति लाए। जब एडविना जहाज में बैठी तो वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाईं। उन्होंने अपने गले से सेंट क्रिस्टोफर का एक क्रिस्टल निकाला और अपनी पीए से कहा कि आप जहाज से नीचे उतरिए और इसे किसी ऐसे शख्स को दे दीजिए जो इसे नेहरू तक पहुंचा दे। जहाज की लंबी यात्रा के दौरान मेरी माँ ने एक शब्द भी नहीं कहा।
लेकिन इसके बाद भी नेहरू और एडविना की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। नेहरू जब भी राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाते, एडविना के साथ कुछ दिन जरूर बिताते। उन दिनों भारतीय उच्चायोग में काम कर रहे खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस में लिखा है कि एक बार नेहरू कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में भाग लेने लंदन आए।
नेहरू के विमान ने जब हीथरो के रनवे को छुआ तो काफी रात हो चुकी थी। अगली सुबह जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मेरी मेज पर कृष्ण मेनन का नोट रखा हुआ था कि मैं उनसे तुरंत मिलूं। मेरी मेज पर ही द डेली हेरल्ड अखबार पड़ा हुआ था, जिसके पहले पन्ने पर ही नेहरू और लेडी माउंटबेटन की तस्वीर छपी थी, जिसमें वो नाइट गाउन पहने हुए नेहरू के लिए अपने घर का दरवाजा खोल रही थी। उसके नीचे कैप्शन लिखा था, लेडी माउंटबेटन्स मिडनाइट विजिटर। खबर में ये भी लिखा गया कि लॉर्ड माउंटबेटन इस समय लंदन में नहीं हैं। जब मैं मेनन के पास पहुंचा तो मुझ पर दहाड़े, तुमने आज का हेरल्ड देखा? प्रधानमंत्री तुमसे बहुत नाराज हैं। मैंने कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे क्या पता था कि पंडित जी अपने होटल जाने की बजाय माउंटबेटन के घर जा पहुंचेंगे।
इसी तरह की एक घटना तब हुई जब एक बार नेहरू ने एडविना को सोहो के एक ग्रीक रेस्तरां में रात के खाने पर बुलाया।
रेस्तरां के मालिक ने उन दोनों को पहचान लिया और अपने रेस्तरां का प्रचार करने के उद्देश्य से प्रेस को फोन कर दिया। अगले दिन के अखबारों में दोनों की अगल बगल बैठे हुए तस्वीर छपी। मैं समझ गया कि मेरी फिर शामत आने वाली है। मेरी मेज पर फिर मेनन का नोट रखा हुआ था कि प्रधानमंत्री मुझसे तुरंत मिलना चाहते हैं। मैं क्लैरिजेस होटल पहुंचा और मैंने प्रधानमंत्री के दरवाजे पर नॉक किया। नेहरू ने मुझे देखकर पूछा, आपकी तारीफ? मैंने कहा, आपने मुझे बुला भेजा था, मैं लंदन में आपका जनसंपर्क अधिकारी हूं। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, जनसंपर्क के बारे में आपकी सोच बड़ी अजीब है।
1960 में जब एडविना माउंटबेटन का बोर्नियो में निधन हुआ तो उनके बिस्तर के आसपास नेहरू के कई पत्र पाए गए। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन के पास ये सारे पत्र पहुंचाए गए।
And so they were brought back to us. And in her will, she had left my father all the letters. She had told him before. She said, "I."
आखिर वो खत हमारे यहाँ लाए गए। अपनी वसीयत में भी उन्होंने नेहरू के लिखे सारे खत मेरे पिता के लिए छोड़े थे। एक पूरा सूटकेस इन खतों से लबालब भरा था। मैं उन दिनों ब्रॉडलैंड्स में अपने पिता के साथ रह रही थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम इन खतों को मेरे लिए पढ़ सकती हो? हालांकि मैं समझता हूँ कि 99.9% इनमें ऐसा कुछ नहीं निकलेगा जिससे मुझे तकलीफ हो। कुछ दिनों तक तो मैं ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने उन सबको पढ़ा। वो गजब के थे। वो असल में भारत को बनाने की एक डायरी थी। उन खतों की शुरुआत हमेशा एक वाक्य से होती थी कि वो मेरी माँ को कितना मिस कर रहे हैं और वो उनके लिए बहुत खास हैं। खत का अंत भी वो एक निहायत ही निजी टिप्पणी से करते थे। उनमें कुछ भी शारीरिक नहीं था। ये सारे खत 2 बजे से 4 बजे के बीच लिखे गए थे और इन सभी को नेहरू ने अपने हाथों से लिखा था।
सवाल उठता है कि नेहरू और एडविना के बीच प्रेम संबंध प्लेटोनिक थे या शारीरिक? माउंटबेटन की बेटी पामेला हिक्स सिरे से शारीरिक संबंधों को नकारती है।
Nowadays, everything is reduced to sex, to carnality.
आजकल हर चीज सेक्स तक संकुचित हो गई है। आज की पीढ़ी के लिए ये बात बहुत अजीब लग सकती है कि कोई किसी से बिना सेक्स के इतनी गहराई से भावनात्मक रूप से जुड़ा रह सकता है। पुराने जमाने में यह अक्सर होता था। सही बात यह है कि मेरी माँ और नेहरू को अकेले में मिलने का बहुत कम मौका मिला। वो हमेशा लोगों से घिरे रहते थे।
लेकिन स्वतंत्र पार्टी के नेता मीनू मसानी के बेटे और इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले जरीर मसानी ऐसा नहीं मानते।
मेरे माता पिता नेहरू को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। नेहरू को सेक्स से परहेज नहीं था। मैं ये जानता हूँ कि वो एक दूसरे को रोमानी प्रेम पत्र लिखा करते थे। 50 के दशक में वो जब भी लंदन जाते थे वो उनके साथ रात बिताया करते थे। हालांकि उनकी ये हरकत भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को पसंद नहीं आती थी। उनमें से एक मेरे चाचा थे जो बाद में भारत के विदेश सचिव बने। ऐसा नहीं लगता कि नेहरू एडविना के साथ सोए नहीं होंगे।
माउंटबेटन के नाती एशली हिक्स ने 1 फरवरी 2017 को डेली टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया था कि नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित ने उन्हें बताया था कि नेहरू तब तक नपुंसक हो चुके थे, इसलिए उनके एडविना के साथ शारीरिक संबंधों की बात फिजूल लगती है।
जहाँ तक खत, जिस तरीके से गिफ्ट्स, फोटोग्राफ्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, इससे पता चलता है कि ये रिलेशनशिप फॉर्मल नहीं था, ये रिलेशनशिप रोमांटिक था। क्या ये फिजिकल था या नहीं था, इसके ऊपर में आप दोनों तरफ जा सकते हैं, क्योंकि फिजिकल रिलेशनशिप दोनों माने नहीं हैं, मतलब दोनों कन्फेस नहीं किए कि फिजिकल रिलेशनशिप था। चांसेस ऑफ उनका हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप इज मच हायर, क्योंकि लेडी माउंटबेटन एडविना का रिलेशनशिप दूसरे मर्दों के साथ था, उनके बॉयफ्रेंड्स थे, तो इसलिए ये नहीं कि वो पहली बार अपने हस्बैंड को बिट्रे कर रही हैं, डिफाई कर रही हैं वगैरह वगैरह, और उनके हस्बैंड का भी इस तरीके से रिलेशनशिप था। आई वुड बी वेरी इंक्लाइंड टू से दैट इट वाज डेफिनेटली कंज्यूमेटेड।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।